श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 11 श्लोक संख्या 22। केचित् कर्म वदन्त्येनं स्वभावं परे नृप एके कालं परे दैवं पुंसः काममुतापरे। अनुवाद तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। कुछ लोग विभिन्न योनियों तथा उनके सुख दुख में पाए जाने वाले अंतर को कर्म फल बताते हैं, कुछ इसे प्रकृति के कारण, अन्य लोग काल तथा भाग्य के कारण और शेष इच्छा के कारण बताते हैं। तात्पर्य, दार्शनिक कई प्रकार के हैं, मीमांसक, नास्तिक, ज्योतिषी, कामुकतावादी तथा चिंतक। वास्तविक निष्कर्ष यह है कि हमारे कर्म ही हमें इस जगत में विभिन्न योनियों में बांध देते हैं। ये योनिया किस प्रकार बनी, इसकी विवेचना वेदों में प्राप्य है। यह जीवात्मा की इच्छा के कारण है। जीवात्मा कोई जड़ पदार्थ तो है नहीं, उसकी तरह तरह की इच्छाएं अथवा काम होते हैं। वेदों का कथन है, कामों कर्षित। जीवात्माएं मूलतः भगवान के अंश हैं। जिस प्रकार अग्नि की चिंगारियां होती हैं, किंतु वे प्रकृति पर विजय की कामना द्वारा आकर्षित होकर इस भौतिक जगत में नीचे गिर आई हैं, यह तथ्य है। प्रत्येक जीवात्मा यथाशक्ति भौतिक स्रोतों पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। यह काम अथवा इच्छा को विनष्ट नहीं किया जा सकता। कुछ चिंतकों का कथन है, यदि कोई अपनी इच्छाएं त्याग दे तो पुनः मुक्त हो सकता है, किंतु इच्छाओं को पूरी तरह छोड़ पाना संभव नहीं है, क्योंकि इच्छा तो जीवात्मा का लक्षण है। यदि इच्छा न हो तो जीवात्मा पत्थर के समान जड़ रहे। अतः श्रील नरोत्तम दास ठाकुर सलाह देते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी इच्छा को श्री भगवान की सेवा की ओर मोड़ दे, तब इच्छा शुद्ध हो जाती है। जब इच्छा शुद्ध हो जाती है तो मनुष्य समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि विभिन्न विचारकों द्वारा प्रस्तुत योनियों तथा उनके सुख दुख की व्याख्या करने वाले सभी सिद्धांत अपूर्ण है। वास्तविक व्याख्या तो यह है कि हम सभी कृष्ण भगवान के नित्य दास हैं, और जो ही हम इस संबंध को भूल जाते हैं तो हम इस जगत में फेंक दिए जाते हैं, जहां विभिन्न कर्मों के द्वारा सुख या दुख भोगते हैं। हम इसमें इच्छा द्वारा आकृष्ट होते हैं, किंतु इस इच्छा को शुद्ध करके भगवान की भक्ति में लगाना होगा, तब इस ब्रह्मांड में विभिन्न रूपों तथा अवस्थाओं में हमारा घूमना बंद हो जाएगा। कुछ लोग विभिन्न योनियों तथा उनके सुख दुख में पाए जाने वाले अंतर को कर्म फल बताते हैं, कुछ इसे प्रकृति के कारण, अन्य लोग काल तथा भाग्य के कारण और शेष इच्छा के कारण बताते हैं। तो स्वयंभू मनु विभिन्न दार्शनिकों के विषय में यहाँ पर बता रहे हैं, क्योंकि क्या सोच है इस विषय को लेकर के कि हम अलग अलग योनियों में किस प्रकार से भ्रमण करते हैं, किस कारणवश हमको कौन सी योनि मिलती है, और उसके साथ जो अलग अलग सुख दुख होते हैं उनका कारण क्या है, इसकी विवेचना यहाँ पर ध्रुव महाराज को कर रहे हैं। तो जो आध्यात्मवादी सही रूप से तथ्य को जानता है तत्वतः, वही गुरु होने लायक है। और यहाँ पर स्वयं मनु सभी दार्शनिकों के विषय में बता करके स्पष्ट ध्रुव महाराज को बताना चाहते हैं कि वास्तविकता क्या है, और प्रभुपाद जी इसी तात्पर्य में व्याख्या करते हैं। जब शौनक इत्यादि मुनिगण सूत गोस्वामी से प्रश्न करते हैं तो भी वो ऐसा विचार रखते हैं कि आप सभी मुनियों को जानते हैं, कि सब मुनियों की क्या क्या विचारधारा है, और आप वेदों में पारंगत हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर स्वयंभू मनु व्यास देव जी के स्वयंभू मनु और फिर आगे व्यास देव जी जो लिखे हैं इसको, जो सभी के लिए गुरु हैं, तो उसी परंपरा में ज्ञान ये आ रहा है, तो इसलिए ये सटीक है, इसमें ये परफेक्ट है, पूर्ण है। रूपा जी यहाँ पर बताते हैं कि बाकी सब दार्शनिक जो है उनकी ये सोच है, कुछ लोग सोचते हैं कि इसका कारण कर्मफल है, कुछ सोचते हैं नहीं जीव की इच्छा है, तो कुछ सोचते हैं नहीं ये सब जीव कुछ नहीं करता है, ये सब प्रकृति कारण ही हो रहा है, तो कुछ सोचते हैं ये सब कोई प्रकृति नहीं, सब भाग्य कारण हो रहा है, ऐसे सबके अपने अलग अलग मत हैं। और विशेष रूप से आजकल के आधुनिक युग में ये भावना बहुत स्ट्रांग है कि कोई नहीं जान सकता है कि वास्तविकता क्या है, केवल सबको अपना विचार ही व्यक्त करना है, एग्जैक्टली कोई जान ही नहीं सकता कि सही क्या है। इसलिए ऐसी बात करते हैं, व्हाट इज योर ओपिनियन, आपका विचार क्या है इस बारे में, मेरा विचार ये है, आपका विचार क्या है। एक बार प्रभुपाद जी जर्मनी में कहीं प्रोग्राम दे रहे थे, तो बहुत सारे यंग लोग थे वहाँ पर, करीब 1000-2000 जितने, और जैसा कि हम देखते हैं प्रभुपाद जी का हमारी पूरी परंपरा में सभी गुरुगण और स्वयं भगवान श्री कृष्ण का जो बोलने का तरीका है वो ऑथोरिटेटिव है, प्रमाणिकता से बोलते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये इसलिए है, ये इसलिए, ऐसा नहीं बोलते कि कुछ के विचार में ऐसा है, कुछ लोग ऐसा ही बोलते हैं लेकिन कुछ ऐसा ही बोलते हैं, लेकिन ये भी है, ऐसा भी है। उस दिन हम पुस्तक पढ़ रहे थे तो अधिकतर दार्शनिक केवल एक विचार व्यक्त करते हैं और फिर अन्यों के विचार व्यक्त करते हैं, उनका विचार ऐसा है, उनका विचार ऐसा है, ये सब विचार हैं, इसमें से आपको जो अच्छा लगे वो चुन लो। इसका मतलब वो नहीं जानते कि वास्तविकता क्या है, यानी वो सोच रहे हैं कि वास्तविकता तो कोई है ही नहीं, ये तो केवल अपने मानने की बात है कि आप जिसको वास्तविक मान लें, तो ये बहुत प्रोमिनेंट है आजकल। इसलिए आधुनिक युग में कोई भी यदि प्रमाणिकता से बोलता है तो सोचते हैं ये फैनेटिक है, ये तो एक्सट्रीम में जा रहा है, ये फैनेटिक है। तो वहाँ पर वो जो लोग एकत्रित थे तो बहुत से लोग उनमें से प्रभुपाद जी के लेक्चर को पसंद नहीं किए, कि प्रभुपाद जी ऑथोरिटेटिव बोल रहे हैं कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तो लोग नहीं जाते हैं सुनना ऐसा होगा। इसलिए जब हम बोलते हैं श्री कृष्ण भगवान है तो एकदम से लोगों को बड़ा झटका लगता है। आप ये बोल सकते हो कि आपके अनुसार श्री कृष्ण भगवान है, पर ये क्यों बोल रहे हो कि श्री कृष्ण भगवान है, हमारे विचार से नहीं है, हमारे विचार से कुछ और है। क्योंकि जब हम ऐसा विचार रखते हैं कि मेरा मानना है तो लोगों को इतना डर नहीं होता है, क्योंकि वो समझ सकते हैं कि ये ठीक है, ये बता रहा है कि उसका मानना क्या है, वो ये नहीं कह रहा है कि मैं भी यही मानूं, इसलिए उनको इतना भय नहीं होता है। लेकिन जब कहा जाता है श्री कृष्ण भगवान है, ये ऐसा है, तो एकदम से लोगों को बड़ा झटका लगता है, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि हम कह रहे हैं कि तुम ये मानो, तो वो एक तरीके से आक्रमण है, तो इसलिए वो अच्छा नहीं लगता है लोग, तो इसलिए लोग ऐसा सुनना चाहते हैं, बस ये बोलो हाँ ये आपकी विचार है, अच्छी बात है, आपका भी एक अच्छा विचार है, हमारा भी एक अच्छा विचार है। तो सोनक मुनि कहते हैं कि आप सभी मुनियों को जानते हैं और आप ये भी जानते हैं कि सही क्या है। तो व्यासदेव जी के सब के बाद में अलग अलग मुनि थे यहाँ पर, जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं मीमांसक नास्तिक इत्यादि ज्योतिषी, अलग अलग दर्शन, विशेष रूप से षड दर्शन प्रस्तुत किए। और व्यासदेव जी ने, वो जो सब ऋषि मुनि थे, वो सब लोग परफेक्टली नहीं विवेचना किए, वो सब थोड़ा थोड़ा अंश जानते हैं। कोई कर्म को कर्म मीमांसक सोचते हैं कि सब कुछ कर्म से हो रहा है। कोई दैव यानी कि जो देवतागण हैं वो भी बाध्य है कर्म के अनुसार सबको अपना अपना कर्म फल देने के लिए, मुक्त नहीं है। तो एक तरीके से कर्म ही सबसे बड़ा है, कर्म मीमांसक ऐसा सोचते हैं। इस प्रकार से अलग अलग वाद है। तो इन सभी को समझना जरूरी है, क्योंकि सत्य को समझने के लिए असत्य को भी जानना जरूरी होता है, जिससे कि सत्य स्पष्ट पता लगे। अगर हम असत्य को नहीं जानेंगे तो फिर सत्य स्पष्ट रूप से नहीं पता लगेगा। इसलिए उपनिषदों के अंदर पहले बताया है कि असत्य क्या है, भगवान क्या नहीं है, इसलिए वो आया है सबकी निराकार है। मतलब भगवान का ये आकार नहीं है, भौतिक आकार नहीं है, भौतिक रूप नहीं है, नेगेटिव ये नहीं है। तो फिर बताया है पुराण के अंदर कि क्या है, और विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम में स्पष्ट प्रारंभ से ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और फिर आगे वासुदेवम वास्तविक वस्तु अत्र, ये वास्तविक वस्तु है। तो इस तरीके से दोनों पहलू देख करके स्पष्ट हमको पता लग जाता है कि क्या है और क्या नहीं है। तो यहां प्रभुपाद जी बताते हैं कि क्या नहीं है और क्या है। तो ऐसा भी नहीं है कि केवल कर्म के कारण ही अलग अलग योनियां मिल रही हैं। तो कर्म के कारण मिल रही हैं, लेकिन प्रश्न फिर ये उठाया सकता है, तो फिर कर्म शुरू कैसे हुए? अगर सब कर्म के कारण हो रहा है तो ये कर्मों का प्रारंभ कब हुआ, कैसे हुआ? ये प्रश्न महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो उत्सुक हैं जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने के लिए, मुक्त होने के लिए। इसलिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि आखिर बंधन का कारण क्या है, क्योंकि यदि बंधन का कारण नहीं समझेंगे तो मुक्ति का उपाय कैसे समझ पाएंगे। यही बात हुई जब सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज पूछे कि ये सब जीवों के लिए श्रेष्ठ क्या है, और ये सब पाप कर्म कैसे, इससे हम बच सकते हैं इसके रिएक्शन से। तो सुखदेव गोस्वामी पहले तो बताया कि पश्चाताप करना चाहिए, अलग अलग विधियां हैं पश्चाताप करने की। लेकिन परीक्षित महाराज संतुष्ट नहीं हुए उससे कि ऐसे मुक्ति हो जाएगी सब पाप कर्मों के फल से, क्योंकि वो जानते थे कि अनेक लोग हैं पश्चाताप करते हैं और फिर दोबारा से पाप कर्म करते हैं, तो पाप करने की वृत्ति तो उनके हृदय से नहीं जाती, तो फिर कैसे संभव है कि पश्चाताप करने मात्र से पाप कर्मों से पूरी तरीके से छुटकारा हो सकता है। तो उनको संतुष्ट नहीं हुई, और सुखदेव गोस्वामी जानते थे कि ये संतुष्ट नहीं हुई है, वो भी जानते हैं उत्तर क्या है, लेकिन उस समय वही चीज बताए हैं। और फिर आगे चलकर फिर बताए हैं कि वो जो कर्मकांड, ये कर्मकांड पश्चाताप इत्यादि कर्मकांड करते हैं तो वो तो छोड़ो, फिर जो ये ज्ञान मार्ग के रास्ते में है वो लोग भी पापों के कर्मों से पूरी तरह से मुक्त नहीं हो सकते, उनको भी मुक्ति नहीं मिलती जन्म मृत्यु के चक्र से, कर्म फल से, कर्म सिद्धांत से, कर्म के चक्र से उनको मुक्ति नहीं मिलती है। आरोह कृष्ण परम पदम पतन त्यदा, वो भी गिर जाते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी फिर बताते हैं कि वास्तव में क्या उपाय है मुक्ति का। केचित केवल्य भक्त्या वासुदेव परायण अगम धुनवंती कृत्स्नेयम् निहारम इव भास्कर, ये संतुष्टिजनक है, ये संपूर्ण है उत्तर। कि जो अघम है वो चीज जो हम बाध्य कर रहे हैं इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में, अघम यानी पाप कर्म, अघम विदुनोति कृत्स्नेयम्, कृत्स्नेय मतलब संपूर्ण रूप से, इस प्रकार से जड़ से कि उनके दोबारा उदित होने का कोई चांस ही नहीं रहे। संपूर्ण रूप से शुद्धिकरण का उपाय केवल एक ही है, केचित केवल्य भक्त्या, केवल भक्ति से मात्र पूर्ण रूप से शुद्धि हो सकती है। वासुदेव परायण, श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति से ही वास्तव में ये पाप बीज का उन्मूलन जड़ से हो सकता है, अन्य कोई उपाय नहीं। क्योंकि तो प्रश्न ये उठ सकता है कि मुक्ति के जो कर्मकांड के अंतर्गत उपाय बताए गए हैं, ज्ञान कांड के अंतर्गत उपाय बताए गए हैं, वो भी शास्त्र में बताए गए हैं, पश्चाताप भी शास्त्र में बताए गए कि ऐसा पश्चाताप करो, ये पश्चाताप करो, इससे आप शुद्ध हो जाओगे, ऐसा बताया गया। और ज्ञान कर्म के बारे में, ज्ञान कांड के बारे में भी शास्त्र में बताया गया है, ये दुकान है। तो फिर यदि वो सही नहीं है तो फिर वेदों में क्यों बताया गया? तो वास्तव में वेदों में वो जो अंश बताए गए हैं, जो वेदों के सही जानने वाले हैं वो जानते हैं, वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्य अहम वेदांत कृत वेद विदेव चा। वास्तव में वेदों को जो सभी सार है वो केवल श्री कृष्ण की शरणागत होने का ही है, वही उपाय है मुक्ति का। सर्वधर्मान परित्यज्य महावेकम शरण, यही निचोड़ है। लेकिन जो अन्य विधियां बताई गई हैं कर्मकांड के अंतर्गत या ज्ञान कांड के अंतर्गत, वो मात्र उन लोगों के लिए एक प्राथमिक उपचार है जो भगवान की भक्ति सेवा को स्वीकार करने के लिए अभी तैयार नहीं है। जैसे हम देखते हैं, मान लीजिए किसी का एक बहुत बड़ा एक कोई बगीचा है किसी का, हम उसके प्रांगण में जाते हैं किसी व्यक्ति के, तो अप्रोच रोड है, एक गेट है बड़ा सुंदर, फिर एक रोड है, चारों तरफ बगीचा है, बड़ा सुंदर फूल खिले हैं। तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, कई बार हम देखते हैं बड़े बड़े घर होते हैं, बहुत दूर से दिखते भी नहीं है घर, बहुत अंदर जाके होते हैं, कई बार आधा किलोमीटर जाके अंदर उनका घर होता है। तो जैसे जैसे हम जाते हैं हम देखते हैं झरने हैं और बगीचे हैं, तालाब हैं, तो हमारी उत्सुकता बढ़ती आती है कि घर कितना सुंदर होगा उसका, जिसका बगीचा इतना सुंदर है, जिसका गेट इतना सुंदर है, रोड इतनी सुंदर है, तो उसका घर कितना सुंदर होगा। मान लीजिए आप ये सब जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, आधा किलोमीटर के बाद गए और वहां पता लगा वो खुले में ऐसे सो रहा है, ऐसे सो घर नहीं है ऐसे ही है, तो ये तो उल्टा हो जाएगा कि जिसका बगीचा इतना सुंदर हो और घर ऐसे झोपड़ी हो अंदर या कुछ नहीं हो, तो उल्टा है। यदि बगीचा अच्छा है तो घर तो और सुंदर होना चाहिए। तो उसी प्रकार से जो वेदों में ये जो कर्म कांड ज्ञान कांड अलग अलग बताए हैं, ये एक तरीके से वास्तविक वस्तु को पहुंचने के लिए अप्रोच है, उसकी तरफ जाने का मार्ग है। तो वो अप्रोच है, वो उसका समापन होता है, ये सब विधियों का समापन होता है शुद्ध भक्ति सेवा में। तो वो उसको स्पष्ट रूप से वो परम गति है, इसलिए बताया गया सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो जो मुक्ति के अन्य जो उपाय बताए गए हैं कर्मकांड इत्यादि के अंतर्गत, वो मात्र मुक्ति का जो परम उपाय है उसके लिए एक अप्रोच है केवल। तो फिर ये प्रश्न उठ सकता है कि अन्य विधियां तो अधिक मुश्किल हैं, कर्मकांड के अंतर्गत जो पश्चाताप की विधियां हैं वो बड़ी मुश्किल हैं, बहुत बहुत उसमें कठिनाई लेनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है पश्चाताप करने के लिए। उसी प्रकार से ज्ञान मार्ग में भी बहुत कठिनाई है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है। लेकिन रिलेटिवली भक्ति मार्ग जो है बड़ा सरल है, उसके अंदर क्या है, हमको बैठे क्लास सुनना है, श्रवण करना है, कहाँ श्रवण करना है और कहाँ है हिमालय पे जाकर के तपस्या करना, या ठंडे पानी में अपने को डुबोना, या चारों तरफ अग्नि लगा करके गर्मी की ऋतु में बैठना, कंपैरिजन करें तो कितना मुश्किल है वो, प्रसाद लेने की तपस्या कितनी सरल है, भगवान को अच्छा अच्छा भोग लगाओ और फिर प्रसाद सेवा करो, नृत्य करो, रिलेटिवली हम देखें बड़ा आसान है। तो फिर ये प्रश्न उठता है कि ऐसा कैसे संभव है कि मुश्किल चीज से संभव नहीं है और आसान चीज से संभव है, ये कॉन्ट्रडिक्शन लगता है। इसलिए कई लोग स्वीकार ही नहीं करते हैं कि भक्ति संभव है, बोलते नहीं हो नहीं सकता, हम तो इतना मुश्किल काम कर रहे हैं, इससे संभव नहीं है तो आसान चीज से कैसे संभव होगा, क्योंकि ये एक साधारण बुद्धि लगती है कि मुश्किल चीज से संभव होना चाहिए, आसान चीज से कम। इसलिए कई लोग सोचते हैं भक्ति उन लोगों के लिए है जो भावुक लोग, जो इतने ज्यादा बढ़े चढ़े नहीं है ज्ञान में, उन लोगों के लिए टेम्परेरी मनोरंजन है, थोड़ा अच्छा है। इसलिए मायावादी लोग भी प्रशंसा करते हैं भक्तों की, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, लोगों को सिखाना चाहिए, क्योंकि लोग ये सब तपस्या भी नहीं कर सकते, बड़ी छोटी स्तर है उनका, इसलिए आप उनको बताओ कि भक्ति करो, नाम लो, अच्छा है, जिससे धीरे धीरे फिर वो लोग तपस्या करेंगे आगे चल करके, अहम ब्रह्मास्मि के स्तर पे आ जाएंगे। अभी वो नहीं कर सकते, इसलिए आप अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये सरल है लेकिन फल जो वेदेशु यज्ञेशु तपसु, जो वेदों के अध्ययन से, ज्ञान से, तपस्या से वो जो सब फल मिलता है, तम एव विदित्वेनम, वो और उससे भी अधिक फल मात्र भक्ति की सरल उपाय से मिल जाता है। तो ऐसा कैसे संभव है? क्योंकि बंधन का जो मूल कारण है वो क्या है, यदि ये समझ जाएंगे तो पता लगेगा कि भक्ति सरल और साथ साथ परम क्या कैसे है। तो बंधन का मूल कारण है इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद मोहेन भारत, कि सभी लोग जो है यहां पर इच्छा और द्वेष के द्वंद से मोहित हैं। समोहम सर्वभूतानि सर्गे यान्ति परंतप, रूपा जी यहां यही पॉइंट बता रहे हैं। सबसे पहले तो जीव के इस भौतिक प्रपंच में आने का कारण समझना होगा। कृष्णा भूलिया से जीव भोगवांच करे निकटस्थ माया धारे झपटिया धरे, मूल कारण है अपने और कृष्ण के स्वाभाविक संबंध को भूल जाना। जीव कृष्ण दास, ये जो मूल सिद्धांत है, संबंध है, इसको भूलना समस्या की जड़ है। इस भौतिक जगत में कृष्णा भूलिया से जीव भोगवांचा करे निकट स्थ माया तारे झपटिया धरे, तो इस जगत को भोग करने की इच्छा ही मूल है। तो जो कर्मकांड विधि है या जो ज्ञानकंड विधि है, उसके अंदर ये जो मूल है इसके ऊपर प्रहार नहीं हो रहा है। ये मूल तो जो का त्यों बना हुआ है। पश्चाताप करके हम स्वर्ग जाएंगे, अपने इन पाप कर्मों से बच जाएंगे और फिर दोबारा से हम वही काम करेंगे। जैसा हम देखते हैं जो कर्मकांड लोग होते हैं, कर्मकांडी लोग होते हैं, तो उनके नियम और वैष्णवों के नियम बड़े अलग अलग होते हैं। इसलिए कर्मकांड में यदि किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है सगे संबंधी की, तो भगवान की सेवा को नहीं कर सकते हैं, बंद कर देते हैं, पाप लगेगा। और भक्त क्या है, किसी भी हालत में भगवान की सेवा रुकी नहीं सकती। तो कुछ और प्रबंध करो सेवा करने का, लेकिन ऐसा नहीं कि भगवान की सेवा बंद कर दो, भगवान को भोग लगाना बंद कर दो। क्योंकि भक्त के लिए महत्वपूर्ण क्या है, भगवान की सेवा है। लेकिन कर्मकांडी के लिए मुख्य क्या है, मुझे पाप नहीं लगना चाहिए। जैसे जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज लीला में बोलते हैं कि मेरे सिर में दर्द है, तो रज चाहिए मुझे, ब्रज की रज चाहिए चरण कमलों की, तो अन्य सभी लोग बोले हम नहीं देंगे क्योंकि हमें पाप रहेगा, और पाप रहेगा तो हम नरक में जाएंगे। यानी उनके लिए केंद्र क्या है, मुक्ति, कृष्ण को प्रसन्न करना उनका केंद्र नहीं है। लेकिन जो गोपीजन है वो बोले हाँ कोई बात नहीं, यदि हमें नरक में जाना पड़े तो भी कोई बात नहीं, यदि भगवान का इससे सिर दर्द चला जाता है। ये दिखाता है कि फोकस, केंद्र क्या है, क्या चाहते हैं। तो कर्मकांडी भगवान की सेवा करते हैं लेकिन उनका मुख्य हेतु भगवान को प्रसन्न करना नहीं है, उनका मुख्य हेतु है स्वकामना। इसलिए वो लोग कर्मकांड के अंतर्गत पश्चाताप के बड़े बड़े उपाय करते हैं, लेकिन वो जो मूल भगवान के प्रति द्वेष है, भगवान की सेवा न करने की वृत्ति है और खुद भोग करने की वृत्ति है, वो तो ऐसी की ऐसी बनी हुई है। एक प्रकार के भोग को छोड़ के दूसरे प्रकार के भोग करने की वृत्ति है। इस भौतिक जगत में भोग नहीं करना है, स्वर्ग जाकर के भोग करना है, तो समझते तो ऐसी कैसी बनी हुई है। इसलिए इतना अधिक पश्चाताप करने के बाद भी वो पाप बीज जो का त्यों बना हुआ है, इसलिए दोबारा से पाप कर्म करेंगे, क्योंकि बीज वही है भोग करने की इच्छा। इसलिए हम देखते हैं स्वर्ग लोक में भी इंद्र तो बहुत उल्टे सीधे काम करते थे, क्योंकि उनके अंदर भी इच्छा वही है भोग करने की इच्छा। उसी प्रकार से हम देखते हैं जो ज्ञानी होते हैं, तो साधारणतः हम देखते हैं लोग उनकी बड़ी प्रशंसा करते हैं, आप लोग क्या, आप तो छोटे मोटे काम करते हो, वो देखो वो कितना तपस्वी है, मौन व्रत 12 साल से किसी से बोला ही नहीं उसने, कितना बड़ा आदमी है। लोगों की नजरों में वो बहुत बड़े होते हैं, जैसे कई होते हैं वृंदावन में भी हैं, क्या है खड़ेश्वर बाबा परिक्रमा पथ में गाते हैं खड़ेश्वर महाराज, तो 12 साल से खड़े हैं, ऐसे अनेक योगी होते हैं, तो ऐसे बड़े बड़े काम करते हैं वो लोग, तो लोग जनरली उनको बहुत मूल्य देते हैं कि ये कुछ है, ये कुछ है, आप लोग क्या खाते हो नाचते हो, ये क्या है, कुछ करो, कुछ तपस्या करो, तो लेकिन ये नहीं जानते हैं कि उनकी तपस्या के पीछे हेतु क्या है। तपस्या के पीछे हेतु है कि सब लोग मेरे को बोलेंगे कि मैं कितना बड़ा तपस्वी हूं, तो यानी इच्छा तो वही है भोग करने की इच्छा। तो ऐसे प्रभुपाद जी लिखते हैं वो जो श्लोक है, धर्म प्रोजित कैतवत्र, ऐसे सभी जो कैतव धर्म है उनको भागवत में निकाल दिया, तो लगते धर्म है, लगते रिलीजियस है, अरे वाह कितना भगवान के लिए कितनी तपस्या कर रहा है, लेकिन हेतु क्या है। हेतु या तो खुद भगवान बन जाना है, या तो योग साधना करके लोगों को कोई भगवान की तरह से हम महान हो गए या मैं भगवान हो गया ऐसा आकर्षित करना है। तो इसी को कृष्णदास गुरुदेव गोस्वामी बोलते हैं कि जितने भी धर्म के नाम पर चल रहे हैं आजकल ये सब छल है, ये सब छल है, धर्म नहीं, ये वास्तविक धर्म नहीं। तो वो कठिन तपस्या करने पर भी, क्योंकि पाप का जो बीज है कि मैं भोगता हूं, ये जब तक बना रहेगा तब तक वो बड़ी बड़ी कठिन तपस्या करके भी इसी भौतिक जगत में भ्रमण करना पड़ेगा, 84 लाख योनि भ्रमण करना पड़ेगा। तो इसलिए समझना जरूरी है कि मूलभूत जीव की इच्छा है, प्रारंभिक इच्छा इस जगत को भोग करने की, और एक बार जब जीव ऐसी इच्छा करता है और भौतिक जगत में आता है और अलग अलग योनियां उसको फिर उसके अनुरूप मिलती हैं, फिर हर योनि में अभी वो बाध्य है उस योनि के अनुसार कर्म करने के लिए, फिर आता है प्रकृति क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकार गुणात्मा करता हम इति मन्यते। तो प्रारंभ में प्रकृति नहीं पकड़ी उसको, प्रारंभ में उसकी जीव की इच्छा है। तो प्रभुपाद जी यहां विशेष रूप से बल देते हैं कि ये नहीं मानना चाहिए कि हमें, जैसे ज्ञानी मानते हैं इच्छा विहीन हो जाना है पूर्ण रूप से और फिर हम मुक्त हो जाएंगे, फिर ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, तो ये भ्रांत धारणा है, क्योंकि जीव कभी भी इच्छा शून्य नहीं हो सकता है। वास्तविक इच्छा विहीन होना है इच्छा को शुद्ध करना, यही इच्छा विहीन होना। इच्छा विहीन होने का अर्थ नहीं है जड़ बन जाना, इच्छा विहीन होने का अर्थ है इच्छाओं को शुद्ध करना। तो ये पूरा भक्ति का प्रोसेस जो है वो शुद्धिकरण का प्रोसेस है। हम अशुद्ध हैं, शुद्ध होना, अशुद्धियां अनेक प्रकार की हो सकती हैं, तीनों गुणों के अंतर्गत 84 लाख प्रकार की अशुद्धियां हो सकती हैं, और उसके अनुरूप हमको एक नया शरीर मिला है और उसके अनुरूप हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन अपनी इन सभी अशुद्धियों से शुद्ध होकर सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुत्तमम्। इसी को भक्ति, शुद्ध भक्ति कहा गया। सभी उपाधियों से मुक्त होना है, उपाधियों से मुक्त होने का मतलब क्या है, सभी अशुद्धियों से मुक्त होना है। तो ये सब जो अलग अलग दूषण है, प्रदूषण है, अलग अलग शरीर है, अलग अलग प्रकार के मन है, ये सब प्रदूषण है, और इन प्रदूषण के अनुसार हर जीव को कोई ना कोई इंद्रिय भोग में वो आकृष्ट होता है। कुत्ते बिल्ली को एक प्रकार का इंद्रिय भोग अच्छा लगता है, तमोगुण के व्यक्ति को एक प्रकार का इंद्रिय भोग अच्छा लगता है, रजोगुण के व्यक्ति को एक प्रकार का भोग अच्छा लगता है, सतोगुण के व्यक्ति को एक प्रकार का भोग अच्छा लगता है, लेकिन भगवान के साथ संबंध तभी स्थापित होगा जब हम इन सभी उपाधियों से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएंगे, इन तीनों गुणों से मुक्त हो जाएंगे। जब हमारे अंदर ऐसे सब प्रकार के भोग करने की इच्छा समाप्त होकर के केवल हम कृष्णदास हैं, इस प्लेटफॉर्म पर रह करके जब तक हम भगवान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए ही मात्र उत्सुक नहीं होंगे, तब तक वास्तव में हम भगवान के साथ आदान प्रदान नहीं कर पाएंगे और तब तक पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। इसलिए कहा गया है जीव कृष्णदास से विश्वास कर ले तो और दुख नहीं। जब तक हम ये को ये विश्वास नहीं हो जाएगा कि हम और कुछ नहीं है केवल कृष्णदास हैं, तब तक हम सुखी नहीं हो सकते, संतुष्ट नहीं हो सकते। तो इसलिए जो भक्ति का पथ है वो है इन सभी उपाधियों से अपने को मुक्त करना। तो इसमें समय लगता है। तो जैसे हम बोलते हैं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, अगर कोई बंदर है तो उसको अदरक का स्वाद क्या पता। तो जो बंदर का शरीर है जब तक उसकी इंद्रियां बंदर की तरह से हैं तब तक उसे अदरक देने का कोई फायदा नहीं। जब मनुष्य आ जाएगा, मनुष्य की जीवा हो जाएगी, तब उसको अदरक का स्वाद पता लगेगा। ऐसे ही जब तक हम भौतिक कर्मश से युक्त हैं तब तक कृष्ण की सेवा का स्वाद नहीं चख पाएंगे। इसलिए कहा गया है सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, मुक्त होना पड़ेगा उपाधियों से, कलमश से मुक्त होना पड़ेगा। इसलिए हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं, दर्शन करते ही बेहोश आते हैं। हम हर रोज राधा गिरिराज जी का दर्शन करते हैं, कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये इंद्रियां हैं ये दूषित हैं, हम बंदर की तरह से हैं। तो अदरक का स्वाद क्या जाने, भगवान की सेवा का स्वाद क्या जाने हम लोग। इसलिए हरे कृष्ण मंत्र करते हैं लेकिन स्वाद नहीं आता है। दूसरी तरफ रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी है, बोलते हैं कि ये दो कानों से और एक जीवा से मैं क्या भगवान का नाम लूं, लाखों लाखों, मेरा इच्छा ऐसा हो रहा है कि लाख लाख कान होने चाहिए, लाख लाख जीवा होने चाहिए, इतना मधुर है ये नाम, लेकिन हम सो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियां भी नहीं है, दिव्य इंद्रियों पर ढका हुआ है, मल ढका हुआ है, इसलिए आप सौदा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं डोंट ट्राई टू सी गॉड, फर्स्ट गेट प्यूरिफाइड, पहले शुद्ध हो, तब आप वास्तव में भगवान को देख पाओगे। तो ये विज्ञान है अपने को शुद्ध करने का। जब तक शुद्ध नहीं होंगे तब तक आस्वादन नहीं कर सकते हैं भगवान की सेवा का। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वो पीलिया रोग से पीड़ित व्यक्ति क्या जाने मीठा स्वाद, जब तक पीलिया रोग है तब तक मीठा स्वाद नहीं आएगा उसको। तो ये हमारी समस्या है। तो वर्तमान में जो हमारी इच्छाएं हैं वो दूषित हैं, उसका कारण है हमारा अहंकार, मिथ्या अहंकार। हम अपने को सोच रहे हैं अलग अलग उपाधियों में, मैं ये भोगता हूं, मैं इस चीज का भोगता हूं, मैं इस प्रकार से भोगता हूं, मैं इस प्रकार से भोगता हूं, कुत्ते के रूप में भोगता हूं, बिल्ली के रूप में भोगता हूं, ब्रह्मा के रूप में भोगता हूं, इंद्र के रूप में भोगता हूं, पुरुष के रूप में भोगता हूं, स्त्री के रूप में भोगता हूं। ये सब बीमारियों से जब तक हम पूरी तरह से मुक्त नहीं हो लेंगे और पूर्ण रूपेण शुद्ध भावना में स्थिर नहीं हो जाएंगे कि मैं केवल कृष्णदास हूं, तब तक आस्वादन नहीं आएगा भक्ति का। इसलिए शुद्ध होना पड़ेगा। और शुद्धि का उपाय क्या है? जो परम शुद्ध है श्री कृष्ण, अपने को उनके संबंध में लाना, उनके संपर्क में लाना। तो इच्छाएं हैं दूषित, उनको शुद्ध करने का उपाय क्या है? इच्छाओं को श्री कृष्ण से संबंधित करना, भगवान की सेवा करने की इच्छा करना, इसके लिए प्रयास करना। ये कटु है, इच्छा के विरुद्ध लगता है, इच्छा के विरुद्ध है। सेवा करने की इच्छा नहीं है हमारे अंदर। भगवान का नाम श्रवण कीर्तन प्राथमिक इच्छाएं हैं। भगवत धाम में एंटर होने के लिए सबसे पहली क्वालिफिकेशन है नाम गणे सदा रुचि, भगवान के नाम और गुणगान में रुचि होनी चाहिए। ये पहली क्वालिफिकेशन है भगवान को समझने के लिए, और वही हम में नहीं है। हाँ, तो इसलिए उपाय है कि इच्छाओं को भगवान की सेवा की ओर मोड़ना, कि भगवान की सेवा करने की इच्छा करना। इसलिए वैधि भक्ति, इसलिए गुरु के संबंध अंडर में रह करके करो सेवा। मन नहीं करता है करो, इसे वैधि भक्ति कहते हैं। मन कैसे करेगा? प्रदूषण है, मन नहीं करेगा। इसलिए अपने को शरणागति, तभी शरणागति की जरूरत है। गुरु के आदेश है इसलिए करो, और ऐसा कर करके धीरे 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 हमें दिव्य इंद्रियां प्राप्त होंगी। जो दिव्य इंद्रियां हैं वो प्रकट होंगी, मैनिफेस्ट होंगी, जो कलमश है वो हट जाएगा, और फिर स्वाभाविक आकर्षण होगा। जैसे गंगा नदी का उदाहरण दिया जाता है कि जैसे गंगा नदी जब हिमालय से निकलती है, गंगोत्री से, तो सागर की तरफ निष्कंटक चलती है, उसको रोक पाना संभव नहीं है। कोई सोचे कि मैं हाथ लगा करके, कुछ लगा करके उसको रोक दूंगा, बहुत तेजी से तोड़ती है। ऐसे ही जब व्यक्ति की आध्यात्मिक इंद्रियां प्रकट होती हैं, यानी कलमश हट जाता है, तो भगवान की सेवा के प्रति उसका आकर्षण ऐसे गंगा नदी की तरह से प्रवाह तेज वेग से बहता है, तो वो होगा समय आने पर। इसलिए उसके लिए शांति से थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो जब हम गुरु के संरक्षण में ऐसे अपने को भगवान की सेवा में लगाते रहेंगे अपनी सभी इंद्रियों को मन को, और जैसे धीरे धीरे वो कलमा छटेगा तब धीरे धीरे जाकर के वो आकर्षण पर, तो हमारी इच्छा शुद्ध हो जाएगी, और जब इच्छा पूर्ण से शुद्ध हो जाएगी तो फिर हमेशा भगवान का चिंतन रहेगा स्वाभाविक रूप से। और फिर अंत काले चमाम स्मरण मुक्ता कले ब्रम यह प्रयाति समझ भाव नात्य संशय, और फिर भगवत धाम जाए। तो इसलिए ये इच्छाओं को शुद्ध करने का उपाय है और ये आवश्यक है। तो ये सब फिलॉसफी जानना जरूरी है कि इसलिए अपनी इच्छाओं को शुद्ध करना है, और वर्तमान में जो हमारे कर्म है वो जो हमें अलग अलग योनियों में किस प्रकार ले जा रहे हैं उसको समझना जरूरी है। पुरुषा प्रकृति स्तो ही भुंगते प्रकृति जान गुणान कारण गुण संग सदसत जन्म योनिषु, हमारी अलग अलग योनि में जाने का कारण है कि हम गुणों के वशीभूत होकर अलग अलग प्रकार की इच्छाएं और अलग अलग प्रकार के कर्म करते जा रहे हैं, और उसके परिणाम स्वरूप अलग अलग योनियां मिलती जा रही है। तो ये योनियों में फिरना तब तक नहीं छूटेगा जब तक हम अपने इन इच्छाओं को शुद्ध करके अपने वास्तविक कर्म कृष्ण सेवा में स्थापित नहीं होंगे। तो ये दर्शन स्वयं भूमि बता रहे हैं ध्रुव महाराज को कि आप इन सबसे विचलित मत हो कि उन्होंने आपके भाई को मार दिया। ठीक है, आपका अपना कर्तव्य किया, पर उससे ऐसा विचलित मत हो कि सब भूल जाओ सब, नहीं तो आप अभी कर्म के बंधन में फंसने वाले हो, और फिर उससे क्या होगा, ये सब चक्कर चलता रहेगा, इससे संभलो, ये सब यथार्थ चीजों को समझो और उसके अनुरूप कार्य करो। हरे कृष्ण।